Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet.
हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पिता के प्रॉफिट के लिए और हम आभारी हैं जोश स्मिथ के और कैसे हम अपने प्रधान को प्यार करते हैं. तुम्हें सुनना चाहिए कि प्रधान मॉनसन को प्रार्थना करना चाहिए कि सब भाइयों के लिए प्रार्थना करता है जो उसके तुम लोगों पर भरोसा है और जो पुरोहित के ऊपर विश्वास है जो इतने ढेर यहाँ पे एकत्रित हुए. मेरे भाइयों, वो हमारे उद्धारकर्ता की अंतिम रात था मनसालित में. उस शाम के पहले जब वे खुद को सभी मानव जातों के चुनने के दर में दिया था, जब वे हमसे अपने चेलों के साथ रोटी को तोड़ा, उसने कुछ कहा जिससे उन्हें हृदय में अचंभा आया हो गया और गहरे उदय से उसने कहा, तुम में से एक मुझे दगाबाज हो गए. चेलों ने उन्हें कहीं बात की सच्चाई नहीं जाननी चाहिए, ना तो वे उधर उधर देखा ताकि उन्होंने कहा उंगली उठाने और कहे क्या वो ये है, क्या वो हम है. बल्कि वो बहुत उदास हुए और हर एक को पूछ ले कि प्रभु क्या वे मैं हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि हम क्या करते हैं. उद्धारकर्ता ने हमसे ये सवाल किया होता, क्या हम अपने आसपास वालों को देखते और खुद से कहते शायद ये भाई रामा या भारे में कह रहा है. मैं हमेशा उस पर शक किया है. ये अच्छा हुआ कि भाई रामा यह है, उसने ये सुनने की जरूरत थी. ये क्या हम या उसके चेलों की तरह खुद से है मारते के क्या वो मैं हूँ. इस सरल शब्दों में प्रभु क्या वो मैं हूँ, मैं ज्ञान के शुरुआत और व्यक्तिगत संपूर्ण और आनंद बदलाव है. एक समय एक आदमी था जिसने शाम के समय अपने पड़ोस में टहलना पसंद था. उसके अपने पड़ोसी के घर के सामने के गुजरा खास पसंद था. इस पड़ोसी के आंगन बहुत साफ सुथरा रहता था, फूल हमेशा खिलती थे, पेड़ स्वस्थ और छाव देता वाला ऐसा दिखता था कि पड़ोसी भरपूर कोशिश करता था कि उसका आंगन सुधर रहे. मगर एक दिन जब वे आदमी अपने पड़ोसी के घर सामने गुजर रहा था, उससे सुंदर आंगन के बीच में एक भारी पीली रंग की दयालिया के जंगली पेड़ दिखा. ये उसका बहुत व्यक्ति लगा. उसने पड़ोसी ने इसके क्यों नहीं उखाड़ा था, क्या उसने देखा नहीं था, क्या उसने नहीं जानता था कि उसके बीच वहीं पर और जंगली पेड़ को ना उखाड़ा दिया. ये अकेले डालियों के सामने की उसके तकलीफ देता है और वह कुछ करना चाहता था कि इसके बारे में क्या वो उस सिर्फ उखाड़ कर फेंक सकता है या उसे पेड़ मार वाले दवाइयों पे मार सकता है. शायद अगर वो रात इस समय जाए तो वो क्या चुपके से उस उखाड़ सकता है. घर लौटते समय ये सब बातें कि उसने मन भरी हो गई थी. वे अपने घर में गया और अपने खुद के आंगन को देखा जो कि कई पीली डालियों के फूलों से भरे थे. क्या ये कहानी हमारे उद्धारकर्ता के शब्द याद दिलाती है, तुम क्यों अपनी भाई के आँख के टीके में देखते हो और अपने आँखों के लकड़ी तुझे नहीं सूझता. पहले अपनी आँखों में से लकड़ी निकाल लो, तब अपने भाई के आँखों से. लकड़ी की टीके की कहानी शायद तुम हमारे खेत की देख सकने की क्षमता की तरह है. मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे इतने सच्चाई तरह की लोगों की मुसीबतों को जानने हैं कि सुझाव बातें लेते हैं, जबकि हमारे कई साल पहले सुसमाचार आई कि आदमी के बारे में जो विश्वास करते हैं था कि अगर वो अपने चेहरे पर नींबू के रस लगा ले तब वो कैमरे के लिए गायब हो सकता है, इसलिए उसने अपने पूरे चेहरे पर नींबू का रस लगा दिया, बाहर गया और दो बैंकों में डाका डाला। बहुत देर नहीं हुआ कि उसके पकड़ लिया गया जब उसके शाम की टीवी के समाचार में उसका तस्वीर आया। जब पुलिस ने वालों ने आदमी के कमरे से ली ताकि वीडियो ले, उसने खुद के मगर मेरे चेहरे पर नींबू का रस था, उसने कहा। जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के एक व्यक्ति ने ये कहानी सुना, उसने दिलचस्पी हुई कि एक आदमी अपने असमर्थता के नहीं पहचान पाया, ये जानने के लिए कि ये एक आम समस्या है और अनुसंधाताओं के कॉलेज की व्यक्तियों को जीवन के खोज योग्यता से छोड़ और करते हैं। ये आदियों कई और तरीकों के किए गया है, हर बार यही परिणाम पर आता है। हम में से कई लोग कठिनाई का सामना करते हैं और आपके सही मायने में देखने में और कामयाब लोग भी अपने खेत के योगदान की पढ़ा कर बदलाते हैं और औरों के योगदान के कहते हैं। उतना जरूरी नहीं है बढ़ा कर कहना कि हम कितना अच्छा गाती चला सकते हैं, कितनी दूर गोल्फ की गेंद को उड़ा सकते हैं, मगर जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि घर काम और गिरजाघर की हमारे योगदान जितना हम करते हैं से बड़ा है, तब हम अपने आप को अंधा कर देते हैं आशीर्वादों को मौकों के देने के जरिए कि हम खुद को बढ़ाइयों की तरीकों के प्रगति दिला सकते हैं। मेरा एक प्रचन वाला एक वार्ड में रहता था जिसका दर्जा गिरजाघर में ऊंचा था। संभाव में तक लगभग सब लोग आते थे, होम टीचिंग के प्रशिक्षित ज्यादा थे, प्राथमिक के बच्चे हमेशा अच्छे खेल के रहते थे, वार्ड मेंबर भोजन के समय बढ़िया भोजन आता था जो कि सब घर के फर्श पर बहुत कम करते थे। मेरा दोस्त और उसके पत्नी को बाद में मिशन पर जाना पड़ा। जब वे 3 साल बाद लौटे, ये धरती असंभव में थे कि जब वे बाहर सेवा प्रदान कर रहे थे उसके वार्ड में 11 धर्मपतियों का तलाक हो चुका था। भले ही वार्ड के पास हर भरी इशार था विश्वास और शक्ति का, उनके दिलों और संदेशों के जीवनों में कुछ अशुभ हो रहा था। और तारीफ की बात यह है कि ये स्थिति नहीं थी। ऐसे बुरे और अक्सर बहकर के चीजों होते हैं जब गिरजाघर के सदस्य सुसमाचार के सिद्धांतों के दूर हो जाते हैं। बाहर से वे यीशु मसीह के चलने लगेंगे, मगर उनके दिलों के अंदर उन्होंने उद्धारकर्ता और उनके शिक्षकों को अलग कर दिया है। वे धीरे धीरे धार्मिक चीजों से दूर हो गए हैं और दुनिया के चीजों के करीब हो गए हैं। जो पुरोहित रखवाले कभी योग्य थे खुद ही बतलाते रहते हैं कि गिरजाघर अच्छा है महिलाओं और बच्चों के लिए मगर उनके लिए नहीं। ये कुछ लोग संतुष्ट है कि उनके पास समय नहीं है, ये परिस्थितियों उन्हें दैनिक श्रद्धा और सेवा से मुक्त करती है जिससे वो आत्मा के करीब रहेंगे। इस योग में जहां लोग अपने आप को सही संभित करते हैं और खुद के बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा हो जाता है कि बहने बना के क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, धर्मशास्त्र अध्ययन बंद में क्यों करेंगे, गिरजाघर संभव और घरेलू शाम संबतों से दूर रहें, ये ईमानदारी से दसवां हिस्सा और बेटना ना भरेंगे। भाइयों, क्या तुम अपने दिलों में झांक के और सरल सवाल पूछो, प्रभु क्या वो मैं हूं? क्या तुम थोड़ा भी भौतुक गए हो आशीष भरे परमेश्वर के सुसमाचार से जो तुम्हारे भरोसे में सौंपा गया है? क्या तुम्हें से संसार की परमेश्वर को मौका दिया कि तुम्हारे बूंदी से आंधी हुई ताकि मसीह के विशाल सुसमाचार को पढ़ रहे? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, खुद से पूछो, मेरे ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारा हृदय इस संसार के सुविधा वाले चीजों में टिका है? ये पुरुषमी यीशु मसीह का केंद्र है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। क्या परमेश्वर की आत्मा का गहरा प्रभाव तुम पर होता है? क्या तुम परमेश्वर और तुम्हारे भाई बंधुओं के प्रेम में जात पकड़ के हुए और नेव डाले हुए हो? क्या तुम परिपथ समय और सच्चाई के गुम लगते हो अपने वैवाहिक जीवन और परिवार में? क्या तुम अपने सब कुछ यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार के लक्ष्य को पाने और जीने के चेतावनी और लंबाई और अच्छाई और करते हो? भाइयों, अगर ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम मसीह जैसा गुणों को लाओ, जैसे कि विश्वास, सर्गुण, ज्ञान, स्थानों, शांति, भाई से दयालु, ईश्वरदार, दयालु, विनम्रता, स्वर्ग के पिता तुम्हें अपने हाथों से औजार बनाए गई लोगों को उधार दिलाने के लिए। भाइयों, हम में से कोई नहीं बदलाना चाहता है कि सच्चाई राह से भटक रहे हैं। अक्सर हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते हैं कि अपने कमजोरियों, पाबंदियों और डर के सामना नहीं कर सकते। इस कारण जब भी हम अपने जीवन को निरीक्षण करते हैं, हम ऐसा एक फिल्टर के मदद की करते हैं जहां तरफदारी बनानों और कहानियों उनसे खुद के बतलाता है, मगर अपने आप को साफ रोक से देखना हमारे धार्मिक बनाती है और दूसरे के लिए है जरूरी। अगर हमारे कमजोरियों और दूसरी परख में रह जाए, तब उद्धारकर्ता का मुक्ति देने वालों शक्ति उन्हें बदल नहीं करेगी और मजबूत नहीं होगी। प्रतिकूल तरीके से हमारा अंधेरा हमारे मानव कमजोरी के प्रति भी हमें दिव्य स्वभाव के प्रति हमें संदेह करता है, जो कि हमारे पिता चाहते हैं कि हमारा अंदर रहे। तब हम कैसे परमेश्वर के शुद्ध रोशनी के सच्चाई को अपने हृदयों पर चमकाएंगे और खुद को देखेंगे जैसे वो हमें देखता है? मैं सुझाव देता हूं कि हम पवित्र धर्मशास्त्रों और भाषणों जो कॉन्फ्रेंस में दिया गए थे, अब ये उपयोगी शिक्षा है जो हमें देख सकते हैं कि खुद निराशन करेंगे लिए। जब तुम प्राचीन और अभी के भविष्यवक्ताओं के संबंधों को सुनते हैं या पढ़ते हो, यह मत सोचो कि कैसे ये संबंध किसी और पर लागू होते हैं और सवाल पहुंचेगा। हमें अपने आनंद पिता से टूटते हृदय और शिक्षा पाने वाले मांगने से होगा। हमारे अंदर सीखे और बलिदान लाने की इच्छा रहने चाहिए और हम अपने कितना कुछ पाते हैं हमारा स्वर्ग के पिता की जैसे जीवन जीना चाहिए। वो जो सीखना है और बदलाना नहीं चाहते नहीं सीखेंगे, और जो बदलने और हो सकते हैं और सोचना लगते हैं कि गिरजाघर में है, पर जो लोग बदल कर और प्रगति करना चाहते हैं, जो उदारकर्ता से सीखना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जो खुद को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह विनम्र कर लेते हैं और वो हमारे स्वर्ग पिता के अपने सोच और कमजोर को मिलना चाहते हैं, वो उद्धारकर्ता के प्रश्चित और चमत्कार को अनुभव करेंगे। वो जरूर परमेश्वर के बढ़िया आत्मा को महसूस करेंगे। उनके एक विनित और अधिकार राहत मिलेगा। वे यीशु मसीह के सच्चे चेला बनेंगे कि इच्छा और खेल के अनुसार मिलेगा। मेरे जीवन में मुझे मौका मिला है कि दुनिया के कुछ सबसे मेहनती और बुद्धिमान पुरुष और महिलाओं को जाने का। जब मैं छोटा था, मुझे प्रसन्नता मिलती थी उन्हों देख के जो पढ़े लिखे संपन्न सफल और जिन्हें दुनिया भर के प्रशंसा मिलता था। मगर इन वर्षों में मैंने ये जाना कि मुझे ज्यादा खुशी मिलती है आश्चर्यजनक और अभिभारी लोगों के देखकर जो मैं अच्छे बिना चल के होते हैं। क्या सुसमाचार अच्छाई के बारे में नहीं, क्या ये समाचार हमें देता है? यहाँ से अच्छाई खबर है और ये हमारे मदद करता है कि अच्छाई बनने के लिए। देवदूत जेम्स के बोल आज हम पर लागू होता है। परमेश्वर अभिमान्य को विरोध करता है पर देने पर अनुरोग करता है। प्रभु के सामने देन बनो और वो तुम पे ऊंचे तक पहुंचाएगा। भाइयों, हमें अपने घमंड के बगल करना है। हमें दिखावे को नजरदास कर देना है और विनम्रता से पूछना है, प्रभु क्या वो मैं हूँ? अगर जवाब होगा हाँ मेरे पुत्र, कुछ चीजों में सुधार लानी है, वे चीजों जिसमें मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस जवान विनम्रता जवाब विनम्रता पूर्वक अपने पापों को खामियों को स्वीकार करेंगे और अपने रवैयों को बदलेंगे। हम इस समय से आगे पूरी कोशिश करें उद्धारकर्ता की आशीष भरी रास्ते पर सिद्धार्थ से चलने के लिए, क्योंकि खुद की स्पष्टता और देखना ज्ञान का श्रुति है। जब हम आशय करेंगे, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे हाथ पकड़ लेगा हमारे झाड़ पर। प्रभु हमें बलिवान बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहला कदम इस विशाल और संपूर्ण चेलापन के मार्ग पर चलना का शुरुआत होता है कि वो सरल सवाल पूछने से, प्रभु क्या वो मैं हूँ? इस मैं गवाही देता हूँ और अपना आशीर्वाद छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।